27 अगस्त दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के सैनिक नेताओं के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध करने के लगाए आरोप।
The mission has concluded that criminal investigation and prosecution is warranted, focusing on the top Tatmadaw generals in relation.
मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी से कहा, नेहरू मेमोरियल से किसी तरह की छेड़छाड़ न करें।
हमेशा से एक भाजपा में राजनीतिक स्तर के ऊपर सोच रही है कि नेहरू का जो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा उनको शख्सियत बना करके एक राष्ट्र निर्माता के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक गठबंधन की सरकार चला रहे थे।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में म्यांमार के सैन्य नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार के सैन्य नेताओं ने युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराध भी किए हैं। इस रिपोर्ट में म्यांमार के कमांडर इन चीफ समेत 6 आला जनरलों के नाम शामिल हैं और इस बात पर जोर दिया गया है कि इन सभी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में मामला चलाया जाना चाहिए। म्यांमार ने अपने सैन्य अधिकारियों पर लगे आरोपों के जवाब में अभी तक कुछ नहीं कहा है। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि ताजिकिस्तान की सीमा के पास रविवार को एक विमान से बम बरसाए गए हैं। अफगान अधिकारियों का दावा है कि ये विमान रूस या ताजिकिस्तान का था। रूस और ताजिकिस्तान दोनों ने इस हमले से इनकार किया है। ये घटना अफगानिस्तान के टखर प्रांत की है। टखर प्रांत में हाल के महीनों में तालिबान सहित सरकार विरोधी हथियारबंद कई समूहों ने हमले किए हैं। ईरान ने अपने खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये कहते हुए चुनौती दी है कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुँचाने की मंशा है। ईरान के वकीलों ने इंटरनेशनल कोर्ट में दलील दी कि अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़कर 1955 की मित्रता संधि का भी उल्लंघन किया है। ईरान के एक वकील मोहसिन मोहेबी ने कोर्ट में कहा,
The United States is publicly propagating a policy intended to damage as severely as possible.
अमेरिका खुलेआम एक ऐसा दुष्प्रचार कर रहा है जिसका उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था, ईरान के नागरिकों और उनकी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। ये थे ईरान के वकील के शब्द। माना जा रहा है कि अमेरिका इसके जवाब में ये तर्क दे सकता है कि दोनों देशों के बीच वर्षों से जारी शत्रुता की वजह से मित्रता संधि निष्प्रभावी हो चुकी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि यूरोप को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रांस अब सुरक्षा के लिए यूरोपीय संघ की भूमिका बढ़ाने की योजनाओं को आगे बढ़ाएगा। नेटो के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में यूरोप की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर फ्रांस के राजदूतों के साथ एक बैठक में इमैनुअल मैक्रों ने कहा,
L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls États-Unis.
यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। यूरोप की सुरक्षा और संप्रभुता की जिम्मेदारी यूरोप को ही लेनी चाहिए। शीत युद्ध खत्म होने के बाद के घटनाक्रम को हमें अच्छे से समझना चाहिए। गठबंधनों की आज भी भूमिका है, लेकिन उनमें संतुलन को देखना होगा। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी श्रीलंका के मन्नार शहर में एक सामूहिक कब्र में बड़ी संख्या में नर कंकाल मिले हैं। विशेषज्ञों की एक टीम यहां दफनाए गए लोगों से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका में सेना और अलगाववादी तमिल टाइगर्स के बीच 26 साल तक गृह युद्ध हुआ, जो वर्ष 2009 में खत्म हुआ था। इस गृह युद्ध के दौरान लगभग 100,000 लोग मारे गए थे और कई लोग लापता हो गए थे। संघर्ष खत्म होने के बाद से अब तक उत्तरी श्रीलंका में 2 बड़ी सामूहिक कब्रें मिल चुकी हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जांच के सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में म्यांमार की सेना के आला अधिकारियों के खिलाफ नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। इस रिपोर्ट में म्यांमार की नेता आंग सान सू ची की भी आलोचना की गई है कि वो हिंसा रोकने में असफल रही। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जांच करने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि म्यांमार में उच्च फौजी अधिकारियों के खिलाफ नरसंहार के आरोप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य क्रिस्टोफर सिदोती ने रिपोर्ट के बारे में एक पत्रकार सम्मेलन में कहा,
द मिशन हैज कंक्लूडेड दैट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन इज वारंटेड फोकसिंग ऑन द टॉप टैटमडोर जनरल्स इन रिलेशन टू द थ्री कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स अंडर इंटरनेशनल लॉ।
आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि म्यांमार की फौज के उच्च अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने चाहिए, जिनमें खासकर नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध पर जोर दिया जाना चाहिए। म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग के सदस्य क्रिस्टोफर सिडोटी के शब्द। ये पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को नरसंहार का नाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार की सेना ने नरसंहार करने के इरादे से बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों को कत्ल किया और उन्हें सामूहिक बलात्कार का निशाना बनाया। रिपोर्ट में नरसंहार के आरोप में खासकर म्यांमार सेना के सेनापति और 5 अन्य सेना के जनरल्स के नाम शामिल किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आयोग के चेयरमैन मर्जुकी दारुस्मन ने कहा कि म्यांमार सेना के कमांडर मिन ओंग लाइंग को इस रिपोर्ट के बाद फौरन अपने पद से हट जाना चाहिए। आयोग की एक सदस्य राधिका कुमार स्वामी ने म्यांमार की नेता ओंग सान सू ची की भी आलोचना की।
We are deeply disappointed that state councillor Daung San Suu Kyi has not used her position or her moral authority to stem, prevent or condemn.
हमें निहायत अफसोस हुआ है कि स्टेट काउंसलर ओंग सान सू ची ने रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा को रोकने या उसकी निंदा करने के लिए न तो अपने पद और न अपने रुतबे का कोई प्रयोग किया। आयोग की सदस्य राधिका कुमार स्वामी ने ये उम्मीद भी जताई है कि इस रिपोर्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पीड़ितों को न सिर्फ न्याय दिलाने के लिए बल्कि भविष्य में उनके खिलाफ हिंसा न हो इसको भी सुनिश्चित बनाएगा। म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है और एक अनुमान के मुताबिक यहां 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान भी रहते थे, लेकिन म्यांमार की सरकार रोहिंग्या लोगों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मानती है और इस कारण इन्हें नागरिकता देने से इंकार भी करती रही है। पिछले साल अगस्त महीने में म्यांमार के रखाइन राज्य में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान चलाया था। सेना का कहना था कि एक रोहिंग्या गुट ने फौज पर हमले किए थे, जिसके नतीजे में अभियान चलाया गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र आयोग से म्यांमार से बाहर रहने वाले सैकड़ों रोहिंग्या लोगों ने शिकायत की कि सेना ने रोहिंग्या के गांव जला डाले, महिलाओं को गैंगरेप का निशाना बनाया और बड़े पैमाने पर आम शहरियों का कत्लेआम किया। उस हिंसा के बाद म्यांमार से 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान पलायन करके बांग्लादेश में पहुंच गए हैं और वहीं रह रहे हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल से किसी तरह की छेड़छाड़ न करने का आग्रह किया है। मनमोहन सिंह ने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता थे। पूर्व प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रधानमंत्री से कहा है कि आपकी सरकार एजेंडे के साथ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी की संरचना में बदलाव करने में लगी है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा न करें। फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
3 दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी और 3 मूर्ति भवन में लाए जा रहे बदलाव को एक एजेंडे का हिस्सा बताया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने इस खत में कहा है कि जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री थे और उनके धरोहर को संजोया जाना चाहिए। अपने खत में मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा है कि उनके वक्त में भी 3 मूर्ति भवन या उससे संबंधित संग्रहालय संग्रहालय या लाइब्रेरी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया था। खत में वाजपेयी की उस स्पीच का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने नेहरू के बारे में कहा था कि इस तरह का महान व्यक्तित्व भविष्य में नहीं सामने आएगा। सरकार ने हाल में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी और तीन मूर्ति भवन में भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों से संबंधित चीजों को भी दिखाने का फैसला किया है और इस संबंध में कुछ पहल भी की गई है। इसे कुछ लोग नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। मनमोहन सिंह के मोदी को लिखे गए खत पर राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं,
हमेशा से एक भाजपा में राजनीतिक स्तर के ऊपर सोच रही है कि नेहरू का जो बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा उनको शख्सियत बना करके एक राष्ट्र निर्माता के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी एक गठबंधन की सरकार चला रहे थे, वाजपेयी जी का खुद नेहरू के प्रति स्नेह था, नेहरू का भी वाजपेयी के प्रति स्नेह था, तो प्रशासनिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई कोशिश ऐसी नहीं करी कि जिससे तीन मूर्ति भवन या नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी और सेंटर में कोई व्यापक रद्दोबदल किया जाए।
मनमोहन सिंह की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए नेहरू सेंटर के डायरेक्टर शक्ति सिन्हा ने कहा है कि ये साफ नहीं है कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें लगाने या उनके भाषणों का जिक्र होने से नेहरू की विरासत कैसे खत्म हो जाएगी। अंग्रेजों के जमाने में बसाई गई दिल्ली के एक हिस्से में मौजूद तीन मूर्ति भवन में कभी ब्रितानी सेना के सेनापति का निवास हुआ करता था। बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू करीब 17 सालों तक यहां रहे और उनकी मौत के बाद इसे एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया, लेकिन उस वक्त तक मुल्क में कांग्रेस ही मुख्य दल के तौर पर सत्ता में मौजूद रही थी। विपक्षी सरकारों के केंद्र में आने के बाद दूसरे कई म्यूजियमों में कई तरह की तब्दीलियां हो चुकी हैं। रशीद किदवई इंदिरा गांधी ट्रस्ट का उदाहरण देते हुए कहते हैं,
इंदिरा गांधी ट्रस्ट में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उन्होंने सोनिया गांधी को आजीवन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का एक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया गया था और उस जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज थे और उन लोगों से सब वो डीड जो थी वो साइन हो गई थी और उसके बावजूद मेनका गांधी ने उसका पुरजोर विरोध किया। वाजपेयी जी ने बाद में वो इतने झगड़े फैल गए कि उन्होंने मेनका का फिर पोर्टफोलियो भी बदला था, लेकिन सोनिया गांधी उस आजीवन अध्यक्ष बनने से वंचित रह गई।
किदवई कहते हैं कि पिछले साल ही इंदिरा गांधी की जन्म शताब्दी थी, लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी ट्रस्ट ने इस मामले में बहुत कुछ नहीं किया।
ये थी फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट। श्रीनगर के एक होटल में मई में एक स्थानीय महिला के साथ देखे जाने के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए मेजर लीथुल गोगोई को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक स्थानीय निवासी से दोस्ती करने और एक अभियान वाले क्षेत्र में अपने कार्यस्थल से दूर रहने का दोषी पाया गया है। गोगोई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
सेना के मेजर लिटिल गोगोई इसी साल मई के महीने में श्रीनगर के ग्रैंड ममता होटल में एक 18 साल की कश्मीरी महिला के साथ देखे जाने के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए थे। मेजर गोगोई ने होटल में 23 मई को ऑनलाइन कमरा बुक कराया था। होटल में पहुंचने के बाद होटल मैनेजमेंट ने मेजर गोगोई को होटल के कमरे में दाखिल होने से रोक दिया था, जिसके बाद मेजर गोगोई और होटल मैनेजमेंट के बीच झगड़ा हुआ था। उस समय होटल के मालिक एजाज अहमद ने बीबीसी को बताया था,
एक्चुअली हमारे पास एक बुकिंग आई लीतुल गोगोई के नाम से कल सवेरे मॉर्निंग 8:30 बजे। जब होटल पहुँचते हैं ये एक मर्द और एक लड़की के रूप में आए थे और फिर हमने इनसे आई कार्ड पूछा तो ये जो आदमी है इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस दी जो आसाम की थी और जो लड़की है वो उनका आई कार्ड आधार कार्ड भी यही आदमी देता है हमको वो, लेकिन बड़गाम श्रीनगर कश्मीर की रहने वाली थी।
इस घटना के बाद पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था और मामले की जांच शुरू की थी। खबरों के अनुसार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने मेजर गोगोई के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और आने वाले दिनों में मेजर गोगोई के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। खबरों के मुताबिक सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मेजर गोगोई किस तरह से एक सिद्धानिया के साथ शक आवर परिस्थितियों में घूम रहे थे और अपनी ड्यूटी के दौरान अपने ऑपरेशनल इलाके को वो क्यों छोड़कर गए थे। मई में इस घटना के बाद सेना के चीफ जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में मीडिया को बताया था कि अगर मेजर गोगोई दोषी करार पाए तो उनको ऐसी सजा दी जाएगी जो एक उदाहरण बन के रह जाएगा। जनरल बिपिन रावत,
हिंदुस्तान आर्मी का कोई भी ओहदेदार हो किसी भी ओहदे पर हो अगर वो कोई गलत कार्रवाई करता है اور ہمارے نظر میں یہ آتا ہے کہ کسی نے بھی اگر کوئی غلط کاروائی کری ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی۔ اگر میجر گوگوئی نے کوئی غلط کاروائی کری ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کو سزا دی جائے گی، اور سزا ایسی دوں گا میں کہ وہ ایک ادھارن بن کے رہ جائے گا۔
کشمیر میں سکریا مانو ادھیکار کاری کرتا احسن اتو نے پوچھا ہے کہ ہوٹل گھٹنا میں تیسرے ویکتی سمیر احمد ملا، جو میجر گوگوئی کے ساتھ اس سمے موجود تھے، کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی ہے۔ غورطلب ہے کہ بیتے سال میجر گوگوئی اس سمے سرخیوں میں آ گئے تھے جب ضلع بڑگام میں اپ چناؤ کے دوران ایک ناگرک فاروق احمد ڈار کو جیپ کے ساتھ باندھ کر انہیں مانو ڈال بنا کر قریب 16 کلومیٹر تک گمایا گیا تھا۔ سینا کے چیف بپن راوت نے بیتے سال میجر گوگوئی کے اس قدم کا سمرتھن کرتے ہوئے میجر گوگوئی کو پرسکار سے سمانت کیا تھا۔ اس معاملے کو لے کر کافی وواد ہوا تھا اور الگ الگ پرتکریائیں دیکھی گئی تھیں۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
بی بی سی ہندی ریڈیو پر بدھوار کو دنیا جہاں،
انتراشٹری خبروں کے پیچھے کا سچ،
شکروار کو اتہاس کی پرتیں کھولتی ویویچنا،
اور شنیوار کو آپ کی آواز انڈیا بول۔
یہ بی بی سی ہے، آپ دن بھر سن رہے ہیں ریحان فضل کے ساتھ۔ تمل ناڈو کی راجنیتی میں نئی پیڑھی نیتتو سنبھالنے جا رہی ہے۔ درمنمنیت کڑگم کو کل نیا ادھیکش مل جائے گا۔ اسٹیلن اپنے پتا ایم کرونا ندھی کی جگہ لیں گے۔ ان کے بھائی ایم کے الاگری کا ماننا ہے کہ انہیں اس پد پر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی نظر میں ان کے بھائی کے ہاتھ میں پارٹی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اسٹیلن کی اصلی پریکشا 2021 میں ہوگی، جب تمل ناڈو ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے۔ سنیے عمران قریشی کی رپورٹ۔
تھوڑے سال پہلے ایک راجنیتک وشلیشک نے ڈی ایم کے نیتا ایم کے اسٹالن کی تلنا برٹین کے پرنس چارلز سے کی تھی، کیونکہ دونوں بہت دشکوں سے ایک پد حاصل کرنے کے لیے انتظار کرتے رہے ہیں۔ آخرکار کل وہ پد، یعنی کہ ڈی ایم کے ادھیکش کا پد، اسٹالن حاصل کرنے والے ہیں، جو ان کے پتا کی زندگی میں وہ نہیں حاصل کر سکے۔ ان کے پتا کرونا ندھی 10 سمے پکش کے ادھیکش چنے گئے، اور یہ کہنا ضروری ہے کہ ڈی ایم کے میں ہر 5 سال گاؤں کی کمیٹی سے لے کر ضلع تک ہر پد کے لیے چناؤ ہوتا ہے۔ تو اس سال کیا ہوا ہے؟ ڈی ایم کے پروکتا منو شنمگم نے کہا،
The General Council, which will meet in the morning of the 28th of August,
کل صبح پارٹی کی جنرل کاؤنسل کی بیٹھک ہونے والی ہے، جس میں 2 پد کے لیے چناؤ ہوگا۔ پہلا کلنگنار کرنا ندھی کا پد جو خالی ہے، تو اس کے لیے ایم کے اسٹالن کا نام نامنکن کیا گیا ہے، اور دوسرا پد ہے ٹریجرر کا، جو پد اسٹالن چھوڑ دیے ہیں۔ اس پد کے لیے دورے مورگن نے نامنکن دیا ہے۔ ہماری جنرل کاؤنسل میں 2800 سدسیہ ہیں۔ ہماری پکش میں راجیہ کو 68 ضلعوں میں بانٹا گیا ہے، اور سارے کے سارے ضلع سچیووں نے اسٹالن کا نام نامنکن کیا ہے۔ یہ تھے منو شنمگم کے شبد۔ جتنا پکش میں آسانی سے اسٹالن ادھیکش پن پا رہے ہیں، اتنا ہی ان کا ورودھ پکش کے باہر آ رہا ہے ان کے بھائی ایم کے الگیری سے۔ الگیری کو کرنا ندھی نے ہی پکش سے 2014 میں نکال دیا تھا، لیکن الگیری نے کہا، ابھی جو کلنگنار نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی کر کے پکش کو بچانا ہے، پکش کو بہت خراب کر دیا گیا ہے۔ یہ تھے ایم کے الگری کے شبد۔ الگری کا ماننا ہے کہ ابھی تک انہوں نے پکش کے معاملوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی، کیونکہ ان کے پتا زندہ تھے، لیکن اب وہ سمے آ گیا ہے جب ان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ الگری 5 سپٹمبر کو چنئی میں میٹنگ بلوائی ہے، جہاں کچھ اہم نرنے لینے والے ہیں۔ لیکن کیا صرف الگری ہی ایک چنوتی ہے اسٹالن کے سامنے؟ ہم نے یہ سوال راجنیتک وشلیشک اور چنئی کے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر این ستیہ موتی سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، الگری کو بہت انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا پربھاؤ تبھی بڑھے گا جب اسٹالن دوسرے چنوتیوں میں وپل ہوتے ہیں۔ اسٹالن پکش کے نیتا چن لیے جائیں گے، لیکن ان کو اگر راجیہ کے نیتا بننا ہے تو ان کے سامنے 2 چنوتیاں ہیں۔ پہلا ہے 2019 کا لوک سبھا چناؤ، اور دوسرا جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے 2021 کا ودھان سبھا کا چناؤ۔ ان چناؤں میں جیتنے کے بعد ہی ان کو تمل ناڈو کے راجنیتی میں عزت ملے گی۔ یہ تھے ان ستیہ مورتی کے شبد۔ ابھی تک تو اسٹالن اپنی ذمہ داریوں کا بہت ہی اچھا پردرشن کرتے آئے ہیں، خاص کر جب ایک کٹھور پتا کے ساتھ دشکوں سے کام کیے ہیں۔ स्टालिन के बारे में एक बात स्पष्ट है कि वो पक्ष अपने नियंत्रण में रखे हैं। अभी यही देखना होगा कि क्या वो तमिलनाडु को भी अपने नियंत्रण में ला पाएंगे या नहीं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
आज सोमवार है और आज के दिन आपको इंतजार रहता है अपने पत्रों का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ हैं
सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी, बहुत दिनों बाद हम तो साथ नहीं आए हैं।
हाँ, ये जोड़ी जो है वो काफी समय के बाद आई है।
हिट हो रही जोड़ी। बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते भी हैं कि आपका अंदाज उनको बहुत पसंद है, जिस तरह से आप चिट्ठियां पढ़ती हैं।
शुक्रिया।
तो मैं देख रहा हूँ कि चिट्ठियां आपके हाथ में है, एक पोस्ट कार्ड है। उसमें आपकी तारीफ हो ना हो, आप पढ़ जरूर दीजिए।
हाँ, लेकिन उसमें बीबीसी की तारीफ राजेश जी भरपूर है, क्योंकि इन्होंने इतना सारा लिखा हुआ है बीबीसी की तारीफ में। ये लिखा है अर्जुन सिंह बदोरिया ने, ग्राम कैथनपुरवा सातनपुरवा अमेठी उत्तर प्रदेश से लिखते हैं।
और जो लिखने वाले उनका नाम आप भूल गई, उनका नाम प्रमोद श्रीवास्तव है। तो दो अच्छा, लोगों की तरफ से चिट्ठी लिखते हैं ये।
देखिए, हाँ तो सही कहा आपने, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और अर्जुन सिंह बदोरिया।
हाँ, भारतीय रेडियो श्रोता संघ के ये हमारे श्रोता है। इन्होंने क्या लिखा है?
हाँ, इन्होंने ये लिखा है कि कुलदीप मिश्र का सभा संचालन शानदार रहता है, विनीत खरे एवं सलमान रावी जी की जो रिपोर्ट आई थी वो भी बेहद शानदार रही।
शानदार रही थी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी हमारे वैसे अगर आलोचना करने पे आते हैं तो बहुत खरी खरी आलोचना भी करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये पोस्ट कार्ड है, और ये जिन्होंने लिखा है इनका नाम है जयंत कुमार दास, जो बेलवा कटिहार से लिखते हैं,
बिहार से।
हाँ, और ये लिखते हैं कि 9 अगस्त के दिन भर में शंघाई से विनीत खरे द्वारा की गई चीन पर जो रिपोर्ट थी वो उन्हें बेहद पसंद आई और काफी ज्ञानवर्धक लगी उन्हें।
विनीत खरे ने चीन से 4 या 5 रिपोर्टों की श्रृंखला प्रसारित की थी और इस पर बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं, आपको पसंद आई ये रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।
और उन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि चीन की प्राचीन सभ्यता और कलाकृतियों पर भी अगर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई होती तो मजा ही आ जाता।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो कभी फिर मौका आएगा तो इस तरह की रिपोर्ट होगी।
तो अब राजेश जी हम मेल पर आते हैं, और ये पहला मेल लिखा है मोतिहारी जिले से, बिहार से लिखा है मंटू कुमार ने, और ये लिखते हैं कि विवेचना के सारे अंक को लेकर एक किताब प्रकाशित कराई जानी चाहिए, इतनी बेहद रोचक उन्हें लगती है रेहान फजल द्वारा की गई विवेचना।
मैं जब ये चिट्ठियां पढ़ रहा था तो इन्होंने शायद लिखा है कि रेहान फजल से उनकी मुलाकात दिल्ली के पुस्तक मेले में हुई। तो मंटू कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इस पर आगे कैसे बात बढ़ेगी मुझे अभी नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसी कोई किताब आ जाएगी तो बहुत खुशी होगी हमको भी।
इलाहाबाद से अनिल शुक्ल जो है वो लिखते हैं कि 27 अगस्त को प्रसारित वसतुल्लाह खान का व्यंग,
यानी आज ही की बात कर रहे हैं।
हाँ, और उन्हें बेहद पसंद आया। उन्होंने धर्म का सहारा लेकर जनता को दबाने वालों का पर्दाफाश किया है, और धर्म के नाम पर जितने लोगों की जाने गई है उतने लोग युद्ध में भी मारे गए हैं।
जी, अनिल शुक्ल जी हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराते रहते हैं, आपका शुक्ला जी धन्यवाद।
अगला ईमेल भेजा है योगेश आर भोइतियो ने, जो भरूच गुजरात में रहते हैं। ये 1990 से बीबीसी सुन रहे हैं और 15 अगस्त को प्रसारित किया गया दुनिया जहां उन्हें बेहद पसंद आया।
बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत सारे श्रोता हैं जो इतने सालों से सुनते हैं लेकिन चिट्ठियां नहीं लिखते हैं, चिट्ठी लिखने में कंजूसी बरतते हैं। तो आप योगेश जी कंजूसी ना बरतें, हमें ईमेल लिखें चाहे चिट्ठी लिखें, और बताइए कि कैसे बीबीसी के कार्यक्रमों को हम और बेहतर कर सकते हैं।
तो ये बेहतरी की आपने बात की, तो देखिए यहाँ पर एक बेहतर करने के लिए एक खत भी आ गया है। विकास शर्मा कुरुक्षेत्र से लिखते हैं, कहते हैं कि एशियाई खेलों पर जानकारी के लिए शुक्रिया, पर इसमें बस भारत के पदक बताए गए, काश हमें पूरे खेलों की रिपोर्ट दी जाती, यानी कि और भी देशों के बारे में उसका जिक्र होता।
ये सवाल तो आपके लिए है सूर्यांशी जी, क्योंकि खेल की खबरें जो है आप भी प्रस्तुत करती हैं, हमारी दूसरी सहयोगी भी प्रस्तुत करते हैं। ये बात सही है कि हमारे कोई संवाददाता वहां पर नहीं है इस बार, लेकिन जो खेल पत्रकार हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार, उनसे हम जानकारी लेते रहते हैं, और उसमें ऐसा वाकई नहीं हुआ है कि पदक तालिका हम बताते रहें हमेशा, लेकिन भारत का अगर कोई भी एथलीट या खिलाड़ी जीता है तो वो सूचना आप तक पहुंचाई गई है।
बिल्कुल। तो अगला ईमेल भेजा है विजयनगर साबरकांठा गुजरात से विशाल भाटिया ने, जो ये लिखते हैं कि पिछले 6 महीने से बीबीसी सुन रहा हूँ, जिससे मैंने 2 प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर ली हैं।
बीबीसी कार्यक्रम सुन के?
हाँ,
कितनी सुंदर बात है।
और बीबीसी से करंट अफेयर्स और इतिहास की बारीक जानकारियां मिलती हैं। फिल्मी गीतों के सहारे भारत में आजादी के बाद के इतिहास पर विवेचना शानदार।
ये ताजा विवेचना की बात कर रहे हैं, साबरकांठा से हमें सुनते हैं। चिट्ठी इनकी शायद, मैं तो मुझे याद नहीं है कि पहले कभी लिखी हो, लेकिन आप इसी तरह सुनते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये हमारा विश्वास है। तो इसी के साथ ही हमारा समय अब यहाँ समाप्त होता है। चलते चलते पता बताते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
जकार्ता एशियाई खेलों में भारत को एक और स्वर्ण पदक मिला है। नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या हो गई है 8। महिला बैडमिंटन में सिंधु एकल मुकाबलों के फाइनल में पहुंच गई है। आइए सीधे चलते हैं जकार्ता खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह के पास। अमनप्रीत, बताइए किस तरह से नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भारत के लिए?
रिहान, बहुत बड़ी उपलब्धि है आज भारतीय एथलेटिक्स के लिए, क्योंकि जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, उनका खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड था 27.43, ये उनका पहले की दूरी थी। आज उन्होंने जो भाला फेंका 88.06, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास बात यह है कि उन्होंने बहुत आसानी से ये मेडल जीत लिया, क्योंकि उनके बाद के जो खिलाड़ी थे, जो एथलीट थे, वो चाइना के थे, काइजिन ल्यू, और वो केवल 82.22 की दूरी तय कर पाए। और जो पाकिस्तान के अरशद नदीम थे, वो 80.75, यानी 6 मीटर का फासला था। ये बहुत बड़ा फासला था, इसलिए ये बड़ी उपलब्धि है।
और इसके अलावा भारत को कई और रजत पदक भी मिले हैं एथलेटिक्स में, उनकी थोड़ी चर्चा करें।
उनके बारे में बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा भारत के केवल दूसरे ही जेवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता है। इनसे पहले 1982 में गुरतेज सिंह, उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब रजत पदकों की बारी, आज 3 रजत पदक आए भारत की झोली में। 400 मीटर हर्डल्स मैन, इसमें धरुण अय्यासामी, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए 48.96, इतने समय में उन्होंने ये दौड़ पूरी करी। शुरू में वो चौथे स्थान पर थे, लगभग 300 मीटर की दूरी तक वो चौथे स्थान पर ही थे। आखिर के 100 मीटर उन्होंने 2 खिलाड़ियों के पीछे छोड़ा और रजत पदक अपने नाम कर लिया। उसके अलावा काफी एक्सपीरियंस एथलीट हैं सुधा सिंह, उन्होंने रजत पदक जीता महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में, और ये उनका पहला मेडल नहीं है, ये उनका दूसरा मेडल है। 2010 की एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तीसरा मेडल बहुत खास मैं कहूंगा इसको, ये है लॉन्ग जंप में नीना वाराकिल। खास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केरल के एक मजदूर की बेटी हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ पर पहुंची हैं और बहुत अच्छा उनका आज प्रदर्शन रहा, 6.51 ये दूरी तय करके उन्होंने आज रजत पदक अपने नाम किया।
क्या बात है अमनप्रीत सिंह। और अब थोड़ी चर्चा बैडमिंटन की, सिंधु पहुंच गई है फाइनल में, बताइए किस तरह से उन्होंने ये मुकाबला जीता?
जी, ये भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली ही भारतीय महिला है जो एशियन गेम्स के एकल वर्ग के फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले 1982 में सैयद मोदी, ये पहुंचे थे एकल वर्ग के, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बने थे, उन्होंने तब ब्रॉन्ज जीता था, तो सिल्वर तो पक्का ही है सिंधु का। आज उनका मैच था अकाने यामागुची, ये जापान की खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड नंबर 2 हैं, उनको 21-17, 15-21, 21-10 से हराया। शुरुआत अच्छी रही, फिर बीच में काफी अनफोर्स एरर आए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल बनाया, नियंत्रण बनाया मैच के ऊपर और फाइनल में प्रवेश कर लिया। निराशा रही साइना नेहवाल की जरूर, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 से खेल रही थी, ताइजू जिंग, ये वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं चाइनीज ताइपे की, 17-21, 14-21, इस स्कोर लाइन से वो हारी। लेकिन ये कोई सरप्राइज हार नहीं है, क्योंकि 9 मुकाबले पहले ही साइना इनसे हार चुकी थी।
बहुत बहुत धन्यवाद अमनप्रीत सिंह आपका जकार्ता से। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में म्यांमार के सैन्य नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया है। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि ताजिकिस्तान की सीमा के पास रविवार को एक विमान से बम बरसाए गए हैं। ईरान ने अपने खिलाफ अमरीकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये कहते हुए चुनौती दी है कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने की मंशा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चेतावनी दी है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमरीका पर निर्भर नहीं रह सकता है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।